ओम शांति। क्या सुना गीत? भगवान हमारा साथी है, भगवान का साथ, भगवान का प्यार, भगवान की मदद। संपूर्ण स्नेह और निरंतर याद, माला में जो आदि में आने वाले मन के हैं, फर्स्ट डिवीजन की आत्माएं, महारथी जो है, बाबा ने उनकी निशानी सुनाई है। हर संकल्प, हर सेकंड बाप का साथ, बाप का सहयोग और बाप का स्नेह उन्हें अनुभव होता है। सहयोग दो, यह मांगने की आवश्यकता नहीं है, वो सदा ही संपन्न है। एक बाप के सिवा उन्हें कोई और नजर नहीं आता, सदा ही बाप से ये आत्माएं कंबाइंड है। ऐसी जो आत्माएं हैं, विजय की माला और दूसरी है याद की माला। अभी अभी मुरली चली है, तो जो फर्स्ट डिवीजन में आने वाली आत्माएं हैं, ये उनकी निशानियां हैं। उड़ती कला, विघ्न विघ्न अनुभव नहीं होते, साइड सीन्स है, जैसे कि रास्ते के नजारे हैं, वो प्राप्तियों में जीते हैं। और जो सेकंड डिवीजन में आने वाली आत्माएं हैं, उनके लिए क्या कहा था? वो चढ़ती कला वाले हैं, चलना रुकना, पार तो वो भी हो जाते हैं लेश मात्र, परंतु कभी कभी विघ्न है, ये महसूसता उन्हें है कि ये विघ्न है। ठहरते हैं फिर चलते हैं, पार तो वो भी होते हैं परंतु लेश मात्र, कभी कभी जरा सा दिल शिकस्त और थकावट का अनुभव होता है। और तीसरे नंबर की कौन सी आत्माएं हैं? माला के अंत में आने वाली, जो कि चलने वाले हैं, चिल्लाने वाली आत्माएं, याद आ गई मुरली? थर्ड डिवीजन की आत्माएं जो है वो क्या करती है? रुकती है, चिल्लाती है। चिल्लाना ये एडिशन है, बाकी सब कुछ सेकंड जैसा है। हम कौन है? तीनों में से मैं कहाँ हूँ? अमृत वेला बाप दादा सभी बच्चों की इस माला का सिमरन करते हैं, तो तुम भी अमृत वेले स्वयं को चेक करो। माला में मैं कहाँ हूँ? क्या भगवान मेरा सिमरन करता है? एक ही पहेली है, मैं कौन की? दुनिया वालों को तो सुनाते हो 84 जन्म की कहानी, उसमें ये अंतिम जन्म सर्वश्रेष्ठ जन्म है, इसमें मैं कौन? ये पहली है। स्वयं स्वयं को चेक करना, क्या भगवान मुझे याद करते हैं? भगवान किसको याद करते हैं? जो भगवान को याद करते हैं, जो प्यार जितना और उतना, हिसाब बताया था बाबा ने उसी मुरली में, उतना ही बाप उसको भी याद करते हैं। जितना समय और जितने स्नेह से बाप को याद करते हैं, बाप भी उतना समय और उतने स्नेह से उन बच्चों को याद करते हैं। मैं कहाँ हूं, अव्यक्त बाप दादा ने कभी कहा है, तुम कहते हो तुम्हारा मुझसे प्यार है। अब जिसका जिससे प्यार है उसको उसके साथ रहना चाहिए। तुम कहते हो तुम्हारा मुझसे प्यार है, तो जिसका जिससे प्यार है उसको उसके साथ रहना चाहिए। मैं हूं अव्यक्त, तुम व्यक्त में क्यों? मैं हूं आवाज से परे, तुम आवाज में क्यों? बाबा ने प्रश्न पूछा है कभी। तो परमात्मा प्रेम का अनुभव करना, परमात्मा साथ का अनुभव करना, और तीसरा परमात्मा की मदद या सहयोग का अनुभव करना, ये सभी ब्राह्मण आत्माओं ने किया तो है। ऐसा शायद ही कोई है कि जिसने भगवान के स्नेह का अनुभव नहीं किया। अगर अनुभव नहीं किया होता तो यहां तक पहुंचे ही नहीं होते। जरूर कभी ना कभी किसी अव्यक्त क्षण में अचानक से उसके स्नेह का अनुभव हुआ है। जब संसार के सारे आधार गिर जाते हैं, एक ही आधार शेष रह जाता है। जब इस संसार में कोई भी मदद नहीं करता, एक ही मदद रह जाती है, और ये एक ऐसी मदद है जो सदा है। वो तो हम उसे भूले हुए थे, वो हमें नहीं भूला है। इन तीन चीजों का अनुभव करना है। कौन कौन सी तीन चीजें? परमात्मा स्नेह, दूसरा चलो ये भी है, इन तीनों से ही परमात्मा मिलन का अनुभव। पिछले सीजन की सारी मुरलियां किस पर थी? मिलन पर। कैसा मिलन है ये? अनोखा मिलन, न्यारा मिलन, अलौकिक मिलन, विचित्र मिलन, दिल में छप जाने वाला मिलन, ऐसा ये मिलन है। अचानक की लॉटरी है ये। अभी बाबा फिर से आ रहे हैं, उसने हमें कुछ होमवर्क तो दिया था, उसको भी हम थोड़ा रिवाइज करेंगे अगली क्लास में। तो अभी जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है शीतल फुहारों में आग। फुहारे पता है क्या होता है? फुहारे अर्थात शॉवर, स्प्रिंकल, बूंद बूंद बारिश, ड्रिजल जिसको कहते हैं। इसमें आग, विषय को कई रीति से लिया जा सकता है, परंतु हम एक दूसरे अर्थों में लेंगे। इस ब्राह्मण जीवन में जब तक पुरुषार्थ में आग ना हो, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। आग, आग चाहिए आग, अग्नि चाहिए अग्नि, क्योंकि ये जो शीतल शीतल मंद मंद गिरती हुई जो बारिश है, इसमें बहुत अच्छी नींद आती है, उठने का मन नहीं करता। इस पथ पर चलते चलते कहीं ना कहीं आत्मा आराम में खो जाती है, विस्मृति की नींद में सो जाती है। पहले तो हम ये चर्चा करेंगे कि ऐसी वो कौन कौन सी बातें हैं जो कि शीतल शीतल मंद मंद वर्षा की तरह जीवन में आती है और हम उसमें खो जाते हैं। ऐसी वो कौन सी सुख सुविधाएं हैं जो हमारे पुरुषार्थ में अग्नि प्रकट करने नहीं देती। ऐसी वो कौन सी बातें हैं जो हमें एक बहुत अच्छी गहरी नींद में सुला के रखती है। रामायण में दिखाया है कुंभकर्ण को, कुछ दिन पहले बाबा ने साकार मुरलियों में याद किया था कुंभकर्ण को। कहते हैं अच्छा है, परंतु फिर सो जाते हैं, जागते हैं फिर सो जाते हैं। कहते तो है बहुत अच्छा है, परंतु सो जाते हैं। उसने भी तपस्या की थी पर छोटी सी गलती कर दी। उसे तपस्या करनी थी इंद्र की, परंतु इंद्रा की जगह वो क्या कहने लगा, निद्रा 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 निद्रा। इंद्रा 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 करने की जगह निद्रा 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 कहने लगा, तो वही वरदान भी मिल गया सोने का। इस ब्राह्मण जीवन में ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जिनके अधीन हम हो जाते हैं और सो जाते हैं। एक गहरी नींद, अ डीप स्लंबर, वो कौन सी बातें हो सकती है? वो कौन सी शीतल शीतल फुहारे, मंद मंद बारिश, वो कौन से आराम के और सुविधाओं के की वस्तुएं हैं जो हमें सुला देती है? क्या कहेंगे क्या कहेंगे? सबको पता है, ऐसी वो कौन सी बातें हैं, ऐसी वो कौन सी चीजें हैं, ऐसी वो कौन सी परिस्थितियां कहो, जो बहुत आरामदायी है और जिसमें हम सो गए हैं। सोचो क्या हो सकता है। आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो जाए।
योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। I'm
सभी ने कहानी सुनी है उस लोमड़ी की और खट्टे बेर की। सुनी है, लोमड़ी जाती है, बेर दिखते हैं, छलांग लगाती है, परंतु उसके हाथ में वो बेर नहीं आते। और फिर जाकर वो क्या कहती है कि बेर बहुत खट्टे हैं। परंतु कहानी यहां पूरी नहीं होती है, उसके आगे की आधुनिक कहानी है थोड़ी और। फिर वो बिल्ली थोड़ा, वो लोमड़ी थोड़े व्यायाम वगैरह करती है, थोड़ा जिम वगैरह ज्वाइन करती है, थोड़ी मसल्स वगैरह बनाती है, थोड़ा रनिंग वगैरह करती है और थोड़ी शक्तिशाली बनती है और जाकर फिर छलांग लगाती है। पहली बार तो हाथ में कुछ नहीं आया तो उसने कहा था पैर कैसे हैं, बहुत खट्टे हैं। परंतु अभी सारी मशक्कत सब कुछ करने के बाद जब जाती है तो एक छलांग में बेर उसके हाथ में होते हैं। पर अब क्या, बेर जब खाती है तो पता चलता है वास्तव में खट्टे हैं। परंतु सबको क्या बताती है, फिर बहुत मीठे हैं। ये आधुनिक मॉडर्न वर्शन है कहानी का। एक झूठी संतुष्टता, एक झूठी संतुष्टता, आत्म प्रवंचना, सेल्फ डिसेप्शन। ब्राह्मण बन गए, थोड़े बहुत नियमों का पालन कर लिया और जैसे हम चल रहे हैं बहुत अच्छा चल रहे हैं, यह सोचना एक झूठी आत्मतृप्ति का भाव। शीतल शीतल मंद मंद फुहारे, झड़ी बारिश वर्षा बूंदा बूंदी। कुछ बातें हम इसमें दिनचर्या से संबंधित जो है वो करेंगे। दिन की शुरुआत होती है अमृत वेला से। अमृत वेला उठ जाना, बाबा के सामने जाकर बैठ जाना और संतुष्ट हो जाना कि हमने अमृत वेला किया, ये एक आत्म प्रवंचना है, आत्मवंचना है। अमृत वेले हमारी स्थिति क्या थी? क्या आधा अमृत वेला नींद में चला गया, हमें पता ही नहीं हम कहां बैठे थे? बैठे थे वो तो पता था, तब जागृत थे, परंतु जब गीत बजा और अमृत वेला पूरा हुआ तब नींद खुली। आंखें तो खुली थी, मन सो गया था। खुली आंखों से सोते हैं ऐसे, उसमें ना तो कोई अनुभव, उसमें ना तो ईश्वरीय प्रेम का अनुभव, प्रेम का, साथ का, सहयोग का, मदद का कोई अनुभव ना होना। और ये कहना कि हम वेला हम उठते हैं, क्या ये स्वयं स्वयं को धोखा देना नहीं है? अमृत वेले पर एक छोटी सी किताब है, कितनों ने पढ़ी है? बहुत कम। कितनों को याद है? कितने सारे कर्तव्य करने हैं अमृत वेला? कैसी जागती ज्योत की तरह हमें बैठना है, बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करना है, बाबा से सर्व वरदान लेने हैं, तिलक लगाना है, ताज लेना है, तख्त पर बैठना है, पांच स्वरूपों का अभ्यास करना है, परम धाम में उस बीज रूप स्थिति का अनुभव जो है उसकी अवधि को बढ़ाना है, फरिश्ते स्वरूप में तो कितने ही सारे कार्य करने हैं। मधुबन में अभी एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है, सब जानते होंगे, पावर ऑफ सकाश। लगभग 20,000 आत्माएं उस व्हाट्सएप के जो ग्रुप है उससे जुड़ी हुई है। और अभी हमने हमारा जो सुबह का क्लास है उसमें भी ये चालू किया है, अलग अलग वर्गों को सकाश। पिछले 10 दिनों में एक दिन था कैदियों को सकाश, एक दिन था राज सत्ता को सकाश, एक दिन था विज्ञान सत्ता को सकाश, धर्म सत्ता को सकाश, आर्मी को सकाश, पुलिस, लीगल डिपार्टमेंट, अलग 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 कितने सारे कार्य हमें करना है। दुखी आत्माओं को, अशांत आत्माओं को, विकारी आत्माओं को, वेश्याओं को, तड़पती हुई भटकती हुई आत्माओं को, इविल स्पिरिट्स को, कितने सारे कार्य हमें करने हैं। बाबा ने कितनी बार कहा है, अंत में वाणी काम नहीं करेगी, संकल्प काम करेंगे। तो क्या ये सारे कर्तव्य हमने किए हैं, या एक झूठी तृप्ति में हम सोए हैं और हमारी अवस्था उसी लोमड़ी की तरह है। स्वयं स्वयं को चेक करना है। ऐसे वो कौन से कारण है जिस वजह से अमृत वेला में नींद आती है। दो प्रकार के नींद करने वाले, दो नहीं तीन। एक तो वो जो अमृत वेला सोते हैं, दूसरे वो जो मुरली में सोते हैं, तीसरे वो जो इस तरह की क्लास चल रही है डिस्कशन वाली, उसमें भी सोते हैं, इतने महारथी हैं। दादी मनोरिंद्रा कभी मेडिटेशन हॉल में क्लास करा रही थी तो सामने की माताएं सारी सो रही थी, तो दादी ने कहा सब माताएं खड़े हो जाओ और पीछे जो दीवार है उसको वहां पर जाके खड़े हो जाओ। परंतु माताएं नींद में ऐसी महारथी थी कि खड़े खड़े भी सोना चालू कर दिया। वो एक आदत है। ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति की नींद कम हुई है, ऐसा नहीं कि अच्छी नींद नहीं हुई है। आदत स्वतः काम करती है, आदत एक बार बन गई तो वो स्वतः ही कार्य करती है। और लंबे समय, बाबा हमेशा कहते हैं ना लास्ट संडे की मुरली में, लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए, बहुत काल का पुरुषार्थ। अचानक एवर रेडी और बहुत काल, तीन शब्द मुरलियों में आते हैं, अचानक एवर रेडी और बहुत काल। बहुत काल का अमृत वेले का जागृत अवस्था का अभ्यास, परमात्म प्रेम का अनुभव करना, ईश्वरीय प्रेम का अनुभव, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना, जो कि सारे दिन भर कितना मुश्किल है, परंतु अमृत वेला वो सहज। देह से डिटैच हो जाना, अलग हो जाना। प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरियम। सच्चित सुखम तुरिया अवस्था है वो, चेतना की चार अवस्थाओं में चौथी अवस्था को तुरिया कहा है, स्वप्न जागृत सुषुप्ति। चौथी का कोई नाम नहीं है, इसके लिए उसे द फोर्थ, तुरिया अर्थात फोर्थ, उस अवस्था का अनुभव, द फोर्थ वे, द फोर्थ स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस, उस तुरिया का अवस्था का अनुभव करना, देह से डिटैच हो जाना, देह और देह की दुनिया। उसके लिए बहुत बड़े त्याग की भी आवश्यकता है। रात में सोते समय हम क्या कर रहे हैं, सोने की विधि क्या है, बात करते करते सो रहे हैं, मैसेज करते करते सो रहे हैं, चैट करते करते सो रहे हैं, टीवी देखते देखते सो रहे हैं, सीरियल देखते देखते सो रहे हैं, इंटरनेट पर लगे हुए हैं, हो सके तो एक नियम इस भट्टी से बनाना है, रात को 8 बजे के बाद नो इंटरनेट, अनलेस एंड अंटिल बहुत आवश्यक है। आप किसी ऐसे जॉब में है कि जो आपको वहां पर जवाब देना ही पड़ता है मेल से या किसी और कारण से, अन्यथा 8 बजे के बाद बंद। नो न्यूज़पेपर, नो इंटरनेट, हो सके तो नो मोबाइल 8 के बाद, क्योंकि एक श्रेष्ठ अमृत वेला करने के लिए श्रेष्ठ तैयारी की आवश्यकता है। बिना तैयारी के ये कार्य नहीं हो सकता। ऐसे सभी भाग्यशाली नहीं है कि उठ जाए और अशरीरीपन का अनुभव हो जाए। कितनी बड़ी साधना की आवश्यकता है, कितनी बड़ी तपस्या की आवश्यकता है। मधुबन में न मालूम कब से, कितने समय से रात्रि क्लास होता है, हर दिन कोई ना कोई भाई क्लास कराता है। उद्देश्य क्या है कि सोने से पहले कोई क्लास सुनना, कुछ पढ़ना अच्छा, और फिर सोना। क्योंकि जिस अवस्था में हम सोते हैं, जो अंतिम संकल्प है उठते ही, वो पहला संकल्प होगा। यदि वो काम का संकल्प है तो वही संकल्प पहला होगा, यदि वो घृणा का संकल्प है तो वही पहला होगा, यदि वो परचिंतन का संकल्प है, किसी आत्मा का संकल्प करते करते हम सो रहे हैं, यदि वो कोई षड्यंत्र है किसी को गिराने का, उसी संकल्प से हम उठेंगे। इसके लिए सोने की विधि, अगर बहुत भारी भोजन खाकर सोते हैं तो कैसे वो शक्तिशाली अमृत वेला, यदि बहुत लेट भोजन करते हैं तो शक्तिशाली अमृत वेला नहीं हो सकता है। कितने सारे कारण हैं। उठते ही सबसे पहले बाबा को गुड मॉर्निंग, और अमृत वेला बिस्तर पर नहीं, बिस्तर का त्याग। जब तक ये त्याग नहीं तब तक अमृत वेला श्रेष्ठ नहीं हो सकता। हो सके तो स्नान और ब्रश और स्नान कर कर ही करे, केवल पानी छिड़कने से नींद जाती नहीं है पूरी, ब्रश चाहिए, ताकि यहां जो स्टिमुलेशन होता है, बहुत सारे सेंटर्स खुल जाते हैं ब्रेन के। ये जो हमारे शरीर में बहुत सारे छोटे 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 पोर्स है, छेद, बाल, जब तक ये सारे ऊपर पानी ना छिड़का जाए, आत्मा संपूर्ण रूप से नहीं जागती। और पर कोई कहते हैं कि जहां सोते हैं वहीं पर अमृत वेला करते हैं, वहीं उठ गए, अमृत वेला किया और फिर सो गए वहीं पर, कैसे अनुभव होगा। एक भाई तो ऐसा था कि जो अलार्म लगा के रखता था 3:30 का, परंतु जब भी अलार्म बजता था तो हाथ पता नहीं अपने आप निकलता था और बंद, अपने आप, ऑटोमेटिक क्रिया थी पूरी। उसने बहुत पुरुषार्थ किया क्या किया जाए, फिर एक विधि निकाली। उसने क्या किया कि सामने की जो बाजू की खटिया है उसके नीचे जाके अलार्म रखा, ताकि उठे फिर घुसे नीचे, ताकि तब तक नींद उड़ जाए। पर जो हुआ वो तो बहुत ही अद्भुत, अलार्म बजा, वो उठा, फिर घुसा नीचे, अलार्म बंद किया और वहीं सो गया। 5 मिनट सोचते हैं 5 मिनट सो जाता हूं, पर वो 5 मिनट के बाद जब आंख खुलती है तो 5 बज जाता है। केवल 5 मिनट सोने की इच्छा है, ज्यादा नहीं, पर जब आंख खुलती है नेक्स्ट तो 5। आदत डालनी है, स्वयं को आदत डालनी है। आदत में शक्ति होती है, बल होता है। जैसे एक उदाहरण है, एक मिलिट्री का व्यक्ति था जो रिटायर हो गया, 30 साल मिलिट्री में था। एक बार रिटायर होने के बाद बहुत सारा सामान उसके सिर पर था, बड़े ही मुश्किल से लड़खड़ाता हुआ वो जा रहा था किसी सड़क से। वहां पर चाय की टपरी पर बैठे हुए कुछ युवक थे, उनको एक शरारत सूझी। वो तो रिटायर व्यक्ति था, अभी कई महीने हो गए थे, रिटायर हो चुका था। तो इन युवकों ने कहा अटेंशन, उसको नहीं कहा, ऐसे ही कहा किसी और तरफ देख के। तो व्यक्ति एकदम अटेंशन हो गया और सारा सामान नीचे गिर गया। गुस्से में वो उनके पास आया और उनको कहा कि तुमने अटेंशन क्यों कहा। तो उन्होंने कहा क्या इस देश में अटेंशन कहना मना है। उसने कहा मना तो नहीं है, पर मैं इतना समय आर्मी में मिलिट्री में रहा हूं, तो जैसे ही शब्द सुनता है हम, तो सुनता हूं तो स्वतः ही अटेंशन हो जाता है। ये किसने काम किया? इसका अर्थ हमारे पास दो माइंड है, एक है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है मैकेनिकल माइंड, रोबोट माइंड। अगर आदत बना दी जाए तो वो स्वतः ही कार्य करती है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, आदत बनाना हमको है बस। और आदत बनाने के लिए सबसे पहले 3 दिन का प्रयोग करो और 3 दिन के बाद फिर अगर सफल हो गए तो 7 दिन और सफल हो गए तो 21 दिन, 21 दिन का प्रयोग हम देखेंगे इस प्रयोग के बारे में। तो आदत, हैबिट, हैबिचुअल माइंड अपने आप काम करता है, ऑटोमेटिक माइंड हो जाता है, वो खाली बनाने भर की देरी है। जैसे खराब आदतें, बुरी आदतें बन गई है और वो स्वतः ही कार्य करती है, हम चाहते नहीं है। कौन ऐसा व्यक्ति है संसार में जो कि सिगरेट, स्मोकिंग, ड्रिंक करता है और ये नहीं सोचता है कि मुझे नहीं पीना है, मुझे नहीं स्मोक करना है। हर एक सोचता है, उसको पता है घर में कितना नुकसान हो रहा है, कोई भी खुश नहीं है उस आदत से, पैसे जा रहे हैं, सब में लॉस ही लॉस चल रहा है। एक तो उदाहरण अभी अभी हमने सुना, एक माता हमारे पास आई और उसने हमसे कहा, वो बहुत अच्छी माता, धारणा युक्त, तो गीता पाठशाला चलाने वाली, उनका बेटा बचपन से ज्ञान में एकदम पक्का कुमार, कितनी बार ज्ञान सरोवर में आके सेवाएं की, परंतु फिर ऐसा संग मिल गया उसको, ऐसे दोस्तों का संग मिल गया कि धीरे धीरे ज्ञान से दूर होता गया। फिर उसने शादी की, उसकी पत्नी आई और अभी तो वो माता मेरे पास आके कहने लगी, इतना पीता है, इतना पीता है, इतना पीता है, मैं क्या करूं, कौन को, ये वो कुमार था कितनी बार पार्टियों को लेके गया मधुबन, और आज कहीं के कहीं पहुंच चुका है। मां को कहता है मेरे घर में नहीं आना, उसको भी निकाल दिया, वो मां और पिताजी अलग रहते हैं, इस परिस्थिति में तक पहुंच गया। मां हमसे पूछ रही थी मैं क्या करूं, क्या योग करूं उसके लिए। तो ये क्यों हुआ? आदत। दिन भर भी ठीक रहते हैं लोग, पर जैसे ही शाम होती है, कविता है ना, कदम स्वतः ही मधुशाला की तरफ, स्वतः ही। दिन भर तो सोचता रहता है पीना बहुत खराब है, नहीं पीना चाहिए, उससे ये नुकसान होता है, वो नुकसान होता है, परंतु जैसे ही शाम होती है मधुशाला की तरफ कदम स्वतः ही बढ़ने लगते हैं। टाइम जैसे होता है उस अनुसार आदत काम करती है। इसके लिए श्रेष्ठतम आदत अपने ऊपर है। तो अमृत वेला संपूर्ण जागृति की अवस्था हो, परमात्मा मिलन का अनुभव हो। पिछले सीजन की सारी मुरलियों में ये होमवर्क था, ये मिलन जो अब कर रहे हो ये सदा होता रहे, केवल जब बाबा आते हैं तब नहीं, सदा होता रहे ये मिलन, आत्मा परमात्मा का मिलन है ये, साधारण मिलन नहीं। 3 प्रकार के मिलन संसार में बताते हैं, एक है साधारण, एक है असाधारण, एक है अति साधारण। पहला है मित्र मित्र का, पहला है पति पत्नी का, भाई भाई का, भाई बहन का, ये जो मिलन है ये साधारण है। उसके ऊपर की श्रेणी का मिलन है शिष्य और गुरु का, और सर्वोत्तम मिलन जो है वो है आत्मा का परमात्मा से मिलन। 3 प्रकार के मिलन। तो अमृत वेला अनुभव करना, सर्व संबंधों का अनुभव। आठ संबंध है बाबा से हमारे। कौन कौन से आठ संबंध? बाबा ने कहा है, कभी कभी तो मुरलियों में कहा है, एक भी संबंध की अगर कमी है तो द्वापर से उस संबंध के वजह से दुख होगा। यदि उसको दोस्त नहीं बनाया अभी तो द्वापर से जरूर किसी ना किसी दोस्त के द्वारा धोखा, यह हिसाब है। जिस संबंध से उसे अभी याद नहीं किया, यदि अभी उसे साजन नहीं बनाया, अपना पति नहीं बनाया, तो माताओं क्या होगा फिर? द्वापर से सुबह जो बात कर रहे थे ना, बुद्धि का ताला खोलो। माताएं बाबा से कहती है कि हमारा पति बहुत तंग करता है, उसकी बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहते हैं तुमने भी तंग किया होगा, मैं क्यों खोलूं उसकी बुद्धि का ताला। तो आठ संबंध कौन कौन से? बाप, टीचर, सदगुरु, तीन हो गए। चौथा सखा, मित्र, फ्रेंड। पांचवा पति, साजन। छठवा बच्चा। सातवा नहीं नहीं संबंध, वो तो प्रोफेशन है। प्रोफेशन अगर गिनाए तो दुनिया में जितने प्रोफेशन है वो सब है। वो गार्डनर भी है, वो बागवान भी है, वो सर्जन भी है, सब है। वो लुहार भी है तो वो धोबी भी है। इसकी तो 1000 की लिस्ट बन सकती है। दुनिया में जो जो प्रोफेशन है वो सब वो है। वो बिजनेसमैन भी है, वो वाले नहीं, दूसरे। मां, भगवान को मां समझना, ये बहुत सुंदर संबंध है। और बंधु आठ, बाप, टीचर, सदगुरु, मां, भाई, सखा, साजन और बेटा। सभी माताओं ने बाबा को अपना बेटा बनाया है, बनाया है या नहीं बनाया? बनाया है। अपने बेटे को खाना खा के ही सोते हो ना, नहीं तो रात भर बेटा भूखा प्यासा चिल्लाता रहेगा। आठों ही संबंध का अनुभव करना। कुमारों ने बाप को अपना बेटा बनाया है? मुश्किल काम है बहुत। कुमारों को पिता बनने का अनुभव नहीं है। हमें तो मुश्किल लगता है बहुत ये। तो आठ के आठ संबंध का अनुभव ऐसा भी कर सकते हैं, किसी एक दिन एक संबंध का अनुभव। एक बहुत सुंदर संबंध है टीचर, उसमें भी गाइड, भगवान मेरा गाइड है। एक दिन केवल इसके ऊपर काम करना है, वो मेरा गाइड है। जीवन में जो भी समस्या है उसके पास जाएंगे, वो गाइड करेगा। हम तो ऐसा ही करते हैं, जब कोई पेशेंट, बहुत डिफिकल्ट वाला पेशेंट आता है जिसका डायग्नोसिस नहीं हो सकता है, इतनी सारी फाइल है, क्या करना है पता नहीं, तब हम उसको गाइड बनाते हैं कि बताओ क्या करना है। हमको याद है एक बार कुंज दादी थे, कुंज दादी नीचे शांतिवन में थे, एक महीना अहमदाबाद में रहकर आए। उनकी लगभग 23 सोनोग्राफी हुई थी, परंतु इतना दर्द था पीठ में, इतना दर्द था कि डायग्नोसिस नहीं हो पाया क्यों है ये। हर अल्टरनेट डे सोनोग्राफी कर रहे थे वहां पर। एक दिन हम नीचे गए थे तो डॉक्टर अशोक मेहता हमसे मिले और कहा कि सचिन तुम जाकर दादी को क्यों नहीं देखते। हमने कहा हमको किसी ने कहा नहीं, हम कैसे जाए, अभी मैं कह रहा हूं जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम गए, दादी तो अंदर थी, इतना दर्द, तड़प रही थी दादी, इतना वो बैकएक था, परंतु किसी रिपोर्ट में कहीं कुछ भी नहीं था। तो हमने कहा हमको रिपोर्ट्स दिखाओ। हमने सारे रिपोर्ट्स देखे, कहीं कुछ खास पता नहीं चला। और फिर वहां की बहनों ने कहा उधर के डॉक्टर से भी बात करो। हमने वहां के डॉक्टर से भी बात किया, हमने उनको पूछा ये हो सकता है। उसने कहा कि हमने तो सब देख लिया, अब तुम ट्राई करके देखो कुछ निकलता है तो। हम ऊपर आए और अमृत वेला जैसे कि एक संकल्प किया कि क्या है, वो सारे जो रिपोर्ट्स थे वो जैसे दिखने लगे और उसके बीच में कुछ मिसिंग लिंक है क्या, कहां कौन सा पॉइंट, और अचानक हमको एक अजीब सी पॉइंट टच हुई कि हो सकता है कि पीछे दर्द तो पेट में था, बैक में नहीं था, सॉरी पेट में दर्द था। हमें ये लगा कि शायद कोई एक हड्डी टूटी है या फ्रैक्चर है पीछे और उस वजह से ये रेफर्ड पेन हो रहा है, जबकि पेट की 23-22 सोनोग्राफी हो चुकी थी, कहीं कुछ नहीं, इतनी सारी जांच हुई थी परंतु बैक का कुछ भी नहीं हुआ था। तुरंत हमें संकल्प है, हमने कहा शायद ये हो सकता है। हम वापस गए नीचे और दादी को कहा कि दादी आपको ऊपर चलना है। दादी तो पहले मना कर रही थी, इतना दर्द था, राजी नहीं थे, फिर भी हम उनको ऊपर लेके आए, रखा हॉस्पिटल में, उनका MRI किया है, उसमें पता चला है कि कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर हुआ है पैथोलॉजिकल। उस आधार से फिर थोड़ी अलग प्रकार से ट्रीटमेंट चालू हुई और 10 दिन के बाद फिर दादी का पेन धीरे 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 कम हुआ। 2011 की शायद ये बात है, धीरे धीरे कम हुआ। तो सर्व संबंधों से अनुभव करना। एक और एक उदाहरण हमें याद आ रहा है, एक छोटी सी बच्ची थी 11 साल की, है तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप, हम उसे नहीं देखते हैं, बच्चों के डॉक्टर देखते हैं, पर उस बच्ची को इतना बुखार रहता था, 104, 103, 104, 15 दिन कंटिन्यूअस। तो उसके पिताजी, वो था दूसरे के पास एडमिट थे, दूसरे कंसल्टेंट, पर उसके पिताजी हमारे पास आए कि उन्होंने कहा आप एक बार देखो। हमने कहा हम नहीं देख सकते जब तक हमें कहा नहीं जाए, क्योंकि वो तो पीडियाट्रिक्स एज ग्रुप में, हम पीडियाट्रिक्स कैसे देखे बच्चों के। तो उन्होंने उस डॉक्टर को कहा, तो डॉक्टर का हमको फोन आया, उन्होंने कहा इस बच्ची का ट्रांसफर ले लो अपनी तरफ और देखो कुछ कर सकते हो क्या। तो जो कुछ करना था हमने उसको ठीक किया, वो ठीक हुई और फिर उसको छुट्टी भी कर दी, कोई बुखार नहीं था अंतिम 4 दिन। तो वो बच्ची चली गई उसके बाद, पर हमको शक था कि जो शायद ये बुखार फिर लौट के आया आ जाएगा, क्योंकि डायग्नोसिस हमारे हाथ में भी नहीं था। हमने तो टेंटेटिव कुछ ट्रीटमेंट चालू कर दी थी जिससे वो जैसे चला गया। तो एक महीने तक वो पेशेंट आई नहीं। अब हम किससे पूछे, ना तो उसका नंबर है ना तो कुछ है। हमको लगा क्या हुआ, कहां चली गई वो बच्ची, उसका नाम गुड़िया था। तो एक मास तक गायब, 1.5 मास हो गया तब भी नहीं आई। हमने उसको 1 हफ्ते के बाद बुलाया था, हम सोच रहे थे कहीं इसने शरीर तो नहीं छोड़ दिया, कोई ऐसा एक डिसीज हो गया जो कि पकड़ में ही नहीं आया, और बस हमने ऐसे ही उसको कुछ तो दे दिया और वो चली गई। क्या हुआ, और एक दिन अमृत वेला हमने ये संकल्प किया कि ये आत्मा जहां कहीं होगी इस संसार में, आज ओपीडी में हमारे 12 बजे से पहले आ जाए, जहां कहीं आत्मा होगी। एक बहुत श्रेष्ठ स्थिति में यह संकल्प किया कि जहां कहीं पर भी होगी आ जाए, और फिर हम भूल गए, फिर जैसी दिनचर्या है उसमें सब व्यस्त हो गए। और जब ओपीडी में इतनी भीड़ थी और पेशेंट्स आना चालू थे, 12 बजने ही वाले थे, जस्ट 5 या 10 मिनट बाकी थे, अचानक से आई और उसने आकर हमको पकड़ लिया। उसका बहुत प्यार था हमसे, छोटी सी थी। तो हमने उससे पूछा तुम कहां थी, पहले तो खुशी हुई कि वो है, हमको थोड़ा डर था शायद ये चली गई। तो हमने उससे पूछा आप कहां थे, उसने कहा मैं ठीक थी इसके लिए आई नहीं। तो बहुत अच्छा लगा। तो हम बात कर रहे थे सर्व संबंधों की अनुभूति, हर संबंध से उसे याद करो, वो गाइड, वो सर्जन है, वो धोबी है, लोहार है, सुनार है, बिजनेसमैन है, मदद करने वाला है, राह दिखाने वाला रहबर है वो, हर संबंध का अनुभव। तो ये था सबसे पहला अमृत वेला। उसके बाद इसमें झूठी संतुष्टता ना हो, सारे अनुभव युक्त अमृत वेला, तो ही तो आत्मा में शक्ति भरेगी। सारे दिन भर कहां तक अपने आप को संभालते रहोगे, बाबा ने कहा है अमृत वेला गाड़ी को ट्रैक पर डाल दो, गाड़ी अपने आप चलती रहेगी। एक दूसरा है अमृत वेले के बाद का समय, जो कल हम रात भी चर्चा कर रहे थे। अमृत वेले के बाद का समय है श्रेष्ठ चिंतन का समय है। अमृत वेला कर लेना और फिर सो जाना और फिर उठना 6:30 बजे, फिर फटाफट तैयार होके मुरली के लिए भागना, ये दिनचर्या भी धोखा देने वाली दिनचर्या है। सारे दिन भर ज्ञान का चिंतन कब करोगे, कब मनन करोगे इतनी श्रेष्ठतम इस ज्ञान को? इसके लिए क्या करना है, अमृत वेले के बाद के समय को सफल करना है। इस सभा में ऐसे कितने हैं जो जिन्हें बहुत अच्छी नींद आती है अमृत वेले के बाद, अच्छी नींद, आधा घंटा सोते तो लगते हैं कि 1-2-3 घंटा हो गया। सच्चाई से बताओ, बहुत गहरा प्रश्न है, गुप्त, कोई भी नहीं, सब जागते हैं फिर तो बहुत ही अच्छा, या 2 उत्तर हो सकते, सभी सोते हैं। सोना नहीं है, टाइम नहीं मिलता, ये नहीं, बहुत सारे कारण देते हैं लोग, बहुत अच्छे अच्छे कारण देते हैं, ऐसे कारण कि उनके सामने कुछ बोल ही नहीं सकते फिर। परंतु की कमाई चट करना है, आत्मा अभी अभी तो जागी है, इतना उसको अनुभव हो गया है। जो लोग 6 बजे उठते हैं डेली, एक ये कैटेगरी है, कुछ ब्राह्मण है सीधा 6 या 7 बजे उठते हैं, दूसरे ब्राह्मण है सुबह उठते हैं अमृत वेला करते हैं 4:45 बजे सोते हैं फिर 6 बजे उठते हैं, ये 2 कैटेगरीज है। देखा गया है दोनों की स्थितियों में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों की स्थितियों में बहुत अधिक अंतर नहीं है। जो बिना अमृत वेले किए उठता है 6 बजे और जो अमृत वेला करके सो जाता है फिर उठता है, बहुत अंतर नहीं है। वही दुख रहता है क्योंकि चिंतन नहीं किया। जागृत अवस्था के बाद में जैसे वो जागरण तो था ही नहीं, वो मजबूरी थी, जैसे धोखा था एक। इसके लिए दूसरी बात कौन सी है, अमृत वेले के बाद सोना, संकल्प करना है, आदत अगर बन जाए तो आदत से वे स्वतः ही कार्य करेगी। तीसरा है मुरली, मुरली जाना, सुनना, पढ़ना, पढ़ाना, ये काफी नहीं है, मुरली का अध्ययन करना है, मनन करना है, चिंतन करना है उसके ऊपर, मुरली से कुछ टॉपिक्स निकालने हैं और उनका विस्तार करना, यह है तीसरी बात। चौथी बात भोजन, भोजन की चर्चा हमने सुबह की, परंतु फिर से भोजन एक ऐसे स्थान पर करना जहां शांति हो सके तो मौन में करना, पॉजिटिव हमारा एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, धन्यभाग, धन्यवाद देते देते बिना किसी कंप्लेंट के। कितने लोग हैं जो भोजन देखते हैं और उनके मन में कंप्लेंट उत्पन्न होती है कि आज ये क्यों बना, इसमें नमक कम है, इसमें ज्यादा है, इसमें ये वो है, इसमें ऐसा है, एक आश्रम था, उस आश्रम का यह नियम था कि जो विद्यार्थी है उस आश्रम में, उस गुरुकुल में, गुरु के पास जो आता था, केवल 3 साल में एक ही बार बोलना होता था और केवल 2 शब्द। क्या नियम था, एक आश्रम में 3 साल में एक ही बार बोलना है और वो भी केवल 2 शब्द। एक विद्यार्थी उस गुरु के पास आया, 3 वर्ष पूरे हुए, 2 शब्द उसे बोलने थे, वो गया और गुरु से उसने कहा बिस्तर सख्त, बिस्तर सख्त, और चला गया। तीन साल फिर पूरे हुए, तीन साल के बाद फिर आया, दो ही शब्द बोलने थे, कहा खाना गंदा। तीन साल फिर पूरे हुए, ऐसे तीन तीन साल का नौ साल, तीन साल फिर पूरे हुए, फिर आया, कहा जाना है। गुरु ने कहा पता है। कहानी पूरी होती है यहां। तीन साल में एक ही बार मिलने का चांस था, एक ही बार बोलने का चांस था, उसमें भी कंप्लेंट, उसमें भी कंप्लेंट। ये नहीं कि यहां यहां जो गुरु ने सोचा कि ये योग्य ही नहीं है, क्योंकि हां गुरु ने और एक चीज कही, गुरु ने कहा ये बहुत ज्यादा बोलता है। क्या कहा? ये बहुत बोलता है। कंप्लेंट, जो प्राप्त हो रहा है उसके लिए धन्यवाद। संसार में जाके देखो, गरीब लोग, अनाथ वर्ग, कुछ मिल नहीं रहा है उनको खाने के लिए। एक बहुत सुंदर योग का संकल्प है, भोजन करते समय सोचो मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन कर रहा हूं। क्या सोचना है? कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करना हो, एक एक निवाला जो मैं खा रहा हूं इस कल्प वृक्ष की हर आत्मा तक पहुंच रहा है। जो भी भूखे हैं, अनाथ है, जिनके पास कुछ नहीं है खाने को, आज इस समय जब मैं भोजन कर रहा हूं, फुटपाथ पर बैठे हुए जो तड़प रहे हैं, उनके भी पेट में यह अन्न जा रहा है। कितना श्रेष्ठ संकल्प है। एक तो तपस्या करनी होती है, कुछ दिनों पहले वरदान था ना, वो सन्यासी झाड़ के नीचे तपस्या करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम यहां कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए हो, ये तुम्हारा ही यादगार है। तो भोजन कहां बैठ के करना? कल्प वृक्ष के नीचे। और इस संसार की हर आत्मा तक ये ब्रह्मा भोजन जा रहा है। इतना ही नहीं, वो आत्मा शुद्ध हो रही है, पवित्र हो रही है। ये संकल्प, तो वो भोजन शक्तिशाली होगा। भोजन खाना है लाइट की थाली में, एक संकल्प बहुत सुंदर है, लाइट की थाली में, लाइट का भोजन। मैं आत्मा लाइट, लाइट का मेरा हाथ, लाइट के हाथ से लाइट की थाली का, लाइट का भोजन। मैं आत्मा लाइट स्वरूप स्थिति में बैठकर स्वीकार कर रही हूं, और ये लाइट इस लाइट में मिलकर सारे विश्व में लाइट फैला रहा है। समान में भोजन खाना, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, तो शुद्धि होगी। एक अव्यक्त संदेश है बाप दादा का, गुलजार दादी के द्वारा, बहुत पहले का, शायद प्रिंट भी नहीं हुआ है, जिसमें बाबा ने एक बात कही थी। पवित्रता के लिए बाबा कह रहे थे, यदि भोजन बाबा की याद में बनाया जाए और याद में स्वीकार किया जाए तो 50% प्यूरिटी स्वतः ही आ जाएगी, 50% पवित्रता स्वतः आ जाएगी, 50% प्यूरिटी। इतनी जो मेहनत है प्यूरिटी के लिए, सुबह जो बताई ब्रह्मचर्य की, किसी का हृदय विदीर्ण तो नहीं हुआ ना सुबह? तो वो सारी बातें स्वतः ही आ जाए, प्रयत्न ना करना पड़े। याद में स्वीकार करना, स्वमान में स्वीकार करना, मौन में स्वीकार करना, कृतज्ञता के भाव से स्वीकार करना, विदाउट एनी कंप्लेंट्स। और अंतिम फुहारे जिसको कहेंगे, वो है शाम का समय। शाम का जो समय है, जैसा अमृत वेला शक्तिशाली है, वैसा ही हमारी शाम भी शक्तिशाली हो। कई लोगों का अमृत वेला सुबह का बहुत अच्छा होता है, पर शाम को टाइम नहीं है। शाम में ऑफिस में है, शाम में ट्रैवल कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें, परंतु आदत की बात है। अगर यहां पर भी आदत बना ली जाए कि जहां पर भी हम है, वहां पर ही योग चालू कर देंगे, चाहे ट्रेवल में है, चाहे मार्केट में है, कहीं पर भी है। हाँ, अगर ये सब चीजें नहीं है फिर तो बैठ के करना है, कम से कम आधा घंटा, 7 से 7:30 एटलीस्ट एवरी डे, हर दिन। जब तक हम इन सभी बातों को फॉलो नहीं करेंगे, एक जैसे कि धोखा है। तो आग क्या है? अब आग, ये तो सारे शीतल शीतल वर्षा थी, इसमें पुरुषार्थ में आग उत्पन्न करने के लिए 3 प्रकार की आग है। एक आग की चर्चा हमने सुबह की है, वो है पवित्रता, और दूसरी और तीसरी है वैराग और प्रभु प्रेम। ये 3 चीजों पर सभी को काम करना है। कौन कौन सी 3 चीजें? पवित्रता, जब तक पवित्रता की अग्नि ना हो उन्नति नहीं हो सकती। अग्नि का रूप धारण कर ले पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृति, हर तरफ से धन, जो धन भी है वो भी पवित्र, उसमें अपवित्रता का अंश ना हो। पवित्रता इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, रॉयल्टी है, पर्सनैलिटी है, पब्लिसिटी है। सबसे बड़ी पब्लिसिटी कौन सी है? प्यूरिटी ही पब्लिसिटी है, प्यूरिटी ही लॉयल्टी है, प्यूरिटी ही ब्यूटी है, प्यूरिटी ही एबिलिटी है, प्यूरिटी ही रियल्टी है, प्यूरिटी ही आधार स्तंभ है। सुबह जो कमेंट्री सुनी बाबा की अव्यक्त मुरली 15 नवंबर की, हो सके तो रोज एक बार सुनना, हो सके तो रोज एक बार सुनना, हर अमृत वेले पवित्रता की प्रतिज्ञा करना, स्वयं से भी और बाबा की से भी। एक बार पवित्रता की प्रतिज्ञा कर ली और हो गई, ऐसा नहीं है, हर दिन करनी होती है। सुबह कह रहे थे ना, ये ग्लास गॉगल साफ करने वाली पॉइंट, हर दिन साफ करने की जरूरत है, हर दिन रिवाइज करना। तो सबसे पहले पवित्रता, दूसरी बात जिसकी अभी हम चर्चा करेंगे वो है वैराग। वैराग की चर्चा बहुत कम है इस ब्राह्मण समाज में, वैराग पर क्लासेस भी बहुत कम है। पहले कभी लहर चली थी वैराग की, बहुत वैराग, और बिना वैराग के, बिना धधकते हुए वैराग के आत्मा उन्नति कैसे कर सकेगी? जन जन तो विलासिता और भोग के संस्कार उसमें है, राग के संस्कार है, राग का अभाव, राग विलीन हो जाए, राग तिरोहित हो जाए, वह राग के अभाव की विराग की अवस्था, वीतर राग की अवस्था हमें लाना है। तो सबसे पहला काम तो ये करना है, मेरा किन किन चीजों में राग है इसकी लिस्ट बनानी है। कौन सी लिस्ट बनानी है? मेरा, मेरी किन किन चीजों में आ सकती है तो माया आ सकती है, बाबा ने कई सारी मुरलियों में कहा है। कई लोग कहते हैं हमारा राग नहीं है, हमारी आसक्ति नहीं है, उसकी परीक्षा तो तभी होगी जब वो वस्तु हटा दी जाए, और फिर भी आप अचल डोल खड़े हो, वो व्यक्ति वहां से हट जाए और फिर भी हमें कोई फर्क ना पड़े, वो राग की अवस्था है। वर्धमान महावीर जैन धर्म के संस्थापक, उन्होंने एक जैन धर्म में कहानी आती है कि एक व्यक्ति जो कि पहले तो राजा था, युवक था, राजकुमार था, वैराग आ गया और महावीर के पास आ गया सन्यासी बनने के लिए। एक गांव से दूसरे गांव, कोई वस्त्र नहीं, सोने को अच्छा बिस्तर नहीं, खाने को अच्छा कुछ नहीं, वो रोज सोचता था यहां से भाग जाऊं। जैसी रात होती थी और वो कठोर बिस्तर और वहां पर मच्छर, इस देश में मच्छरों ने बहुत तंग किया है योगियों को और सन्यासियों को, सबसे ज्यादा तंग किया है, क्योंकि वो तो कहीं पर भी सोते थे, तो वो रोज संकल्प करता था कि मैं यहां से भागू आज, आज रातों रात भाग जाता हूं, ये मार्ग अब मेरा नहीं है, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, मेरा नहीं है ये। और एक दिन जब तैयारी कर चुका था और निकलने ही वाला था तो महावीर वहां पर आ गए, उसको बिठाया, उससे कहा कहां जा रहे हो, उसने सीधा सीधा बता दिया मैं यहां नहीं रह सकता, ये हार्डशिप मैं नहीं सहन कर सकता। उन्होंने कहा बैठो, जाति स्मरण, जैन धर्म में जाति स्मरण है, पूर्व जन्म की स्मृतियां, हिप्नोटिक रिग्रेशन मेडिकल में जिसको कहते हैं। तो उन्होंने कहा, उसे दृष्टि दी और उसे अपने पूर्व जन्म में लेके गए और दिखाया कि इसके पहले कम से कम 3 से 4 बार वो इसी तरह संन्यास लेना चाहता था, इसी तरह जीवन में सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करना चाहता, पर कहीं उसकी शादी हो गई वो फंस गया, कहीं और कोई बाधा आ गई वो फंस गया, सब कुछ उसे दिखा दिया उसके जीवन का और उससे कहा कि अब निर्णय करो क्या करना है। एक ही गलती कितनी बार करोगे, कब तक वही भोग वही विलास, क्या इस भोग ने आज तक किसी को सुखी किया है? हम भोग को नहीं भोगते, भोग हमें भोगते हैं। आत्मा की शक्ति क्षीण होती है, मुझे किस किस में राग है, किस किस व्यक्ति में आ सकती है। कल की मुरली में था ना, ये संसार की केस कैसी है, अब होपलेस, ममत्व मिटा दो, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। वस्तु व्यक्ति पदार्थ कहां कहां राग है उसकी लिस्ट, फिर नेक्स्ट ये जो राग है, इस राग के वजह से, इस अटैचमेंट के वजह से क्या क्या दुख मिला है मुझे। हम सोचते हैं ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसके साथ हमारी बहुत अच्छी मित्रता है, परंतु हो सकता है जो तुम समझते हो ये मेरा सबसे स्नेही है और सबसे अच्छा है और मुझे सहयोग देता है, तुम्हारी उन्नति में हो सकता है वही बाधा है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा है अंत में कि यदि मैं तुम्हें रास्ते पर मिल जाऊं तो मेरी गर्दन काट देना। अपने उन शिष्यों से कह रहा है जो अनन्य है, जिन्होंने संसार छोड़कर उनके पीछे आ गए, सारी उम्र उसके साथ चले, अब उनके शिष्यों से प्रवचन में कहते हैं कि यदि मैं तुम्हें रास्ते पर मिलूं तो मेरी गर्दन काट दो। अर्थात इसका बहुत गूढ़ अर्थ है। हमने कहा दूसरा जो मिलन है वो शिष्य और गुरु का है, बहुत श्रेष्ठ मिलन है, पर हो सकता है वो गुरु ही बाधक बन जाए, वो गुरु में ही मोह उत्पन्न हो जाए शिष्य का, ये भी तो बाधा है इस मार्ग में। अपोदीप भव, हे आनंद, पाली भाषा में शब्द है अपोदीप भव, अपना दीपक खुद बनो, किसी और का आधार, किसी और का सहारा, किसी और का साथ। एकांगी पगडंडी है ये, एकला चालो रे, कोई साथ नहीं है यहां, ना तो पति ना पत्नी ना बच्चे ना सास न ससुर न मित्र न संबंधी, इस मार्ग में हर एक को अकेले ही चलना है। एकला चलो रे, वॉक अलोन, ये भ्रम है हमारा कि हम सोच रहे हैं ये मेरा साथी है। पुरुषार्थ के इस अग्नि पथ पर हर एक अकेला है, हर एक के हिसाब किताब अपने हैं। इसके लिए ये भूल फिर मत करना, सोचो अपने जीवन में कितनी बार कितनों को साथी बनाया, कहां है वो, सोचो जीवन की उस घटना को याद करो कि जिसमें हम इतने अकेले थे और किसी ने हमको साथ नहीं दिया, सोचो मदद उस समय कहां से आई थी। मदद केवल एक सही है, द्रौपदी ने कितनों को याद किया, किसी ने मदद नहीं की इतनी राजसभा में, पर तब तक वो भूल ही रही उसको। और जब उसको याद किया तब रक्षा हुई। परंतु वो याद भी कैसी हो, आर्त पुकार हो, वो हृदय से उठने वाली आवाज हो, वो अंतस की गहराई से उठने वाली वो आवाज हो, मेरा बाबा कहने से कुछ नहीं होगा, नारे लगाने की बात नहीं है। बाबा ने कहा ये मुख का सौदा नहीं, ये दिल का सौदा है। कितनी मुद्दियां चली है इसके ऊपर, मेरा बाबा ही चाबी है, सुबह कह रहे थे ना, पर यहां तो मेरा बाबा भी कहते रहते और रोते भी रहते, दोनों चीजें साथ साथ। पुकार जो ऐसी पुकार हो, सीधा उस तक पहुंचे, उसमें फिर किसी देहधारी की याद नहीं, किसी का सहारा नहीं, सहारे लेकर देख लिया, सभी अनुभव है, अनुभवी है। क्या हम ऐसा कह सकते कि इस व्यक्ति ने मुझे आज तक कभी भी धोखा नहीं दिया? अपने दिल पर हाथ रख के कहो, उसने तो दिया नहीं, पर शायद हमें महसूस हुआ होगा कभी ना कभी उसके शब्दों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा। आधार एक है, एक से प्रीत, चिरा चिरा जुड़ला माजा, मीच माजा संग झालो, मैं ही मेरा संग हूं और कोई सहारा नहीं। तो अपने अंदर वैराग लाना है। और सुबह एक महत्वपूर्ण बात हम कर रहे थे, वो थी वैराग कैसे लाया जाए। पहला तो वैराग क्या है, राग का अभाव। वैराग क्यों, क्योंकि धोखा ही धोखा है यहां। वैराग कैसे, कैसे वैराग लाए, ये बात तो सबने सुन रखी है कि विनाश होने वाला है, विनाश हुआ पड़ा है, परंतु इधर से सुना और गई, इसका असर ही होना बंद हो गया है। जो बात बहुत बार हैमर की जाती है उनका असर होना फिर धीरे धीरे बंद हो जाता है। ऐसा कौन है कि जो जिसने ये सुना नहीं है कि विनाश सामने खड़ा है, और मुरली सुनने के बाद एकदम वैराग्यमयी अवस्था, बहुत ही कम है। मीरा कहती है भोजन भवन भलो नहीं लागे, कैसी उसकी वैराग की अवस्था है कि प्रभु प्रेम में भोजन भवन भलो नहीं लागे, कुछ अच्छा नहीं लगता है उसको इस संसार का। क्या ऐसा हमारा वैराग है? सुबह एक बात कही थी गीता से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम। वैराग लाने की विधि है साक्षी होकर देखना, किसको देखना, जन्म को देखो, उससे थोड़ा कम आता है, अगले जो तीन है उससे वैराग आता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। व्याधि का चिंतन करो, बीमारी का, कहां है वो अभिमान, व्यक्ति कितना अहंकारी था अपने सौंदर्य पर, पद पर, प्रतिष्ठा पर, जब वो मरता है तो कुछ भी हाथ में नहीं है, मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है, कहां वो अहंकार। सिकंदर के जीवन में उल्लेख है कि उसने मरने से पहले अपनी एक बात लिखी थी, उसने कहा कि मैं जब मरूंगा तो मेरे दोनों हाथ मेरे अर्थी के बाहर हो। उनके सिपाहियों ने कहा ऐसी तो कोई प्रथा है ही नहीं हमारे देश में कि अर्थी के बाहर दो हाथ हो। उसने कहा ऐसा ही करना, क्योंकि मैं ये सोचता था जीवन भर कि मैंने सब कुछ पा लिया, सब कुछ जीत लिया, परंतु अब मृत्यु आ रही है तो देख रहा हूं हाथ में तो कुछ भी नहीं है, खाली हूं, रिक्त हूं, एम्प्टी हैंडेड। मृत्यु का चिंतन, जलती हुई चिता को देखना, ये एक दूसरा अभ्यास है। जलती हुई चिता को देखना, वास्तव में जो शमशान घाट होता है वो शहर के बीचों बीच होना चाहिए, शहर के बाहर बनाते हैं। क्यों बीचों बीच होना चाहिए? याद दिलाने के लिए कि यही है वो अंतिम स्थान, यही है अंतिम निष्पत्ति, यही है जीवन भर की आपाधापी का परिणाम। कितना भाग रहे थे, ये चाहिए वो चाहिए, ये करूं वो करूं, इससे मिलूं उससे मिलूं, ये चाहिए ये व्यक्ति चाहिए, और परिणाम क्या? कुछ रहा हाथ में? कुछ भी तो नहीं। मृत्यु का चिंतन। महात्मा बुद्ध के पास जब भी कोई एक व्यक्ति आते थे संन्यस्त होने के लिए, उनसे वो कहते थे जाओ जाकर पहले 3 मास तक शमशान घाट में गुजारो, सुबह से लेकर शाम तक चिताओं को जलता हुआ देखो, यह है अग्नि, कैसे बचा पाओगे स्वयं को वैराग से? वो अग्नि की लपटों को देखकर ही वैराग जागता है मन में। बाबा जिसे क्या कहते हैं? शमशानी वैराग। भल थोड़े समय के लिए, परंतु यहां पर देखना है एक तो सारे संसार को जलते हुए, दूसरा अपनी ही चिता को देखो। दादियों ने यह अभ्यास किया है। कौन सा अभ्यास? स्वयं को जलता हुआ देखना। कहां है वो अकड़, सब कुछ समाप्त। सोचो मेरी अर्थी जा रही है, सोचो मुझे जलाया जा रहा है। हम ये सोचते थे कि ये सेवा केवल मैं ही कर सकता हूं, मेरे अतिरिक्त ये सेवा कोई नहीं कर सकता। अब सुनो उन लोगों की बातें जो वहां पर है आसपास। शायद कोई कह रहा है अच्छा ही हुआ गया, हम तो सोचते थे लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम सोचते थे ये जो सेवा है, ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो मैं काम करता हूं सेवा करता हूं, और कोई नहीं कर सकता। पर शायद हो सकता है तुम ही बाधा थे उस सेवा में, उस तुम्हारी वजह से वो सेवा 10 साल से वहीं के वहीं है। अगर कोई दूसरा आ जाए तो बहुत अच्छी हो गई होती वो सेवा, कितने हम भ्रम में जीते थे, सोचते थे कि आई एम इंडिस्पेंसिबल, और कोई कर नहीं सकता ये सेवा, ये विशेषता मुझ में ही है। मृत्यु सब कुछ ले जाती है। तो रोज जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इसका दर्शन करना तो वैराग उत्पन्न होगा। तो सबसे पहला मृत्यु, दूसरा जरा बुढ़ापा, रूपे जराय भयम। भरतरी वैराग्य शतकम में लिखा है रूपे जराय भयम, जो रूपवान है उसे बुढ़ापे का भय है। कितने ही सुंदर दिखने वाले एक दिन क्या होगा? बूढ़ा तो सबको होना ही है। क्या कोई ऐसा कह सकता है कि मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा और मेरा ये जो सौंदर्य हमेशा ही रहेगा? सब अनित्य है यहां पर, अनित्य मसुखम लोकम। बुढ़ापे का चिंतन करना, कोई नहीं है वहां पर, दांत गिर गए हैं, खाना नहीं खा सकते, सुनाई नहीं आता है, दिखता नहीं है, बेटों ने छोड़ दिया है, कोई देखने नहीं आता है। हॉस्पिटल में कहीं पर भी चले जाओ तो ऐसे कितने केसेस मिलेंगे। वृद्धाश्रम, माँ बाप बेटे छोड़ के आ जाते हैं, वापस कोई मिलने नहीं आता है कभी। बुढ़ापा, कुछ कर नहीं सकते, उठ नहीं सकते, यही अंतिम गति है वास्तव में। किस बात का अहंकार, किस बात की अकड़, क्या ये सब देखकर भी हमें वैराग नहीं आता? यहां के सुखों में इतने क्यों लिप्त है? और तीसरा है व्याधि, व्याधि अर्थात बीमारी। कभी हॉस्पिटल का भी चक्कर लगाया करो, किसी से मिलने नहीं ऐसे ही, मिलने नहीं ऐसे ही, केवल देखने के लिए क्या अवस्था में लोग हैं, बीमारी होने पर क्या हालत हो जाती है, बीमार की भी उसके परिजनों की भी। ऐसी बीमारी जो ठीक होने वाली नहीं है, एक ही मास में 3-3 बार हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। एक बीमारी ठीक नहीं हुई तो दूसरी बीमारी। इनका सभी का चिंतन करके मन में वैराग का भाव लाना है। ये आग चाहिए आग। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हॉस्पिटल में चले जाना, जाएंगे सभी, बीच बीच में चले जाना। कई लोग हमारे हॉस्पिटल में आते, फल लेके आते, फल देते और चुपचाप निकल जाते, किसी को जानते नहीं, किसी को बात नहीं, बस फल देते और निकल जाते। निष्काम सेवा, समाज सेवी जो होते हैं ना, वो इस तरह की सेवा करते हैं। परंतु वो सब देखते हुए भी मन में वैराग आए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, जनरल वार्ड में जाओ, एक एक बेड पर दो दो पेशेंट्स, कुछ कुछ पेशेंट नीचे, पैसे नहीं है, इतनी खराब हालत है, उसके बाद भी क्या यह देह आकर्षित करेगा? यदि यह देह आकर्षित अब भी कर रहा है तो शायद यह देह क्या है उसे ही समझा नहीं है। एक राजकुमार था जो एक कभी किसी राज आखेट पर गया और भटक गया रास्ता, और फिर किसी दूसरे राज्य में आया तो वहां की जो राजकुमारी थी उसे बहुत अच्छी लगी, जो कि बहुत सुंदर है, और उसने कहा कि मुझे तुमसे विवाह करना है। उस राजकुमारी ने कहा विवाह मैं तुमसे करूंगी परंतु 15 दिन के बाद। और वो दिखाया है शास्त्रों में कि वो राजकुमारी ब्रह्मज्ञानी होती है। वो उसको कहती है 10-15 दिन के बाद आ जाना। और ये 10-15 दिन दिखाया है उस कहानी में, पुराणों में ये कहानी आती है कि उसने ऐसी चीजें खाई कि जिसमें उसको दस्त हुई, बहुत एकदम ऐसी हो गई, कुशक्राया काया, निर्बल हड्डियां रह गई, और उसका जो स्टूल विष्टा मल मूत्र वो सब उसने पॉलीथीन की बैग में भर के रखा और बहुत अच्छा सजाया उसको और एक कमरे में रखा। जब 15 दिन के बाद वो राजकुमार आया, उसने कहा राजकुमारी कहाँ है? दासी ने कहा अंदर है। अंदर जाके देखा तो शॉक्ड, केवल हड्डी मांस का पुतला है, हड्डी अस्थि पंजर। उसने कहा आप कौन है? उसने कहा मैं वही राजकुमारी हूं जिससे तुम विवाह करना चाहते थे, और मेरा सौंदर्य बाजू के कमरे में रखा हुआ है, जाकर देख के आओ। ब्यूटी इज बट स्किन डिप, यह जो चमड़ी है बस यहीं तक है सौंदर्य, इसको उखाड़ दो, अंदर क्या है? मल मांस, अ बकेट ऑफ स्टूल एंड यूरिन। ह्यूमन बॉडी इज बट अ बकेट ऑफ स्टूल एंड यूरिन, इसके अतिरिक्त इस देह में कुछ नहीं है। परंतु उपन्यासकारों ने और ये फिल्मों ने इसे क्या 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 कहा है। भ्रमित वर्णन सौंदर्य का, तुलसीदास को भी दिखाया वैराग कैसे आ गया, अपनी पत्नी से मिलने कैसे गया, वो मुर्दा था उसके ऊपर बैठ के पहुंचा, वो सांप लटका हुआ था उसको लांग पकड़कर ऊपर पहुंचा। उसकी पत्नी ने उससे एक ही शब्द कहा कि जितना प्यार तुम्हें इस देह से है उतना ही प्यार यदि राम से हो जाए तो तुम राम को पालोगे, बस उतना कहा। उसकी पत्नी ही शिक्षक बन गई और वैराग आ गया और इस संसार का त्याग कर दिया। ऐसा धधकता हुआ वैराग, यहां की कोई वस्तु हमें चाहिए नहीं, जिसको बाबा कहता है यहां की हर वस्तु छीछी है, पुरानी है, थर्ड क्लास है, विषय वैतरणी नदी है, मैं तुम्हें क्या देने आया हूं और तुम क्या चाहते हो? वैराग, स्वयं में वैराग की आग चाहिए। तो सबसे पहली आग थी पवित्रता, दूसरा वैराग, और तीसरी आग है प्रभु प्रेम की आग। जब तक ये आग नहीं जलेगी उन्नति नहीं हो सकती। ऐसे ही स्वयं को भुलावे में रखा हुआ है, ऐसे ही झांसे में रखा हुआ है हमने स्वयं को। प्रभु प्रेम किसको कहेंगे? प्रभु प्रेम यदि ये पूछा जाए कि बाबा से प्यार किस किस का है तो सभी हाथ खड़ा करते हैं, परंतु याद रखना परमात्मा प्रेम पर बहुत गहरी मुरलियां चली है। अगर वो पढ़ो तो शायद कदम पीछे हटे। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम क्या जो हम कर रहे हैं वही प्रेम है? ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय स्नेह, क्या वैसा ही स्नेह हमारे हृदय में है? न को देवराया अंत आता पाहूं प्राणहा सर्वथा साहू पाए। क्या ऐसी ईश्वरीय प्रेम की लगन हमें लगी है? बाबा जिसे कहते हैं कि याद भूलना मुश्किल हो, क्या वैसी हमारा भी प्रेम है? वो मीरा थी एक, क्या उसने कोई डांस क्लासेस ज्वाइन किए थे कभी, या कोई सिंगिंग कंपटीशन, सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन किए थे? वह राजस्थान जहां स्त्रियों ने कभी घूंघट नहीं उठाया, राज रानी सड़कों पर आ गई। क्यों? किसने करने को कहा उसे? किसी ने तो कहा ही नहीं था उसे। कौन था वो? ईश्वरीय प्रेम। यहां की कोई भी वस्तु हमें संतुष्ट ना करे, केवल ईश्वरीय प्रेम वाक का रूप धारण करे। क्या वैसा ही हमारा प्रेम है? क्या उसने अग्नि का रूप धारण किया है? विरह शब्द है हिंदी में एक, विरह अर्थात द पेन ऑफ सेपरेशन, द पैंग्स ऑफ सेपरेशन, विरह अग्नि। जैसी गोपियों की अवस्था थी, क्या वैसे हम गोपी बने हैं? कृष्ण गाती गीती, कृष्ण ध्याती चित्ती, हे ची कृष्ण होती कृष्ण ध्याने, क्या वो हमारी अवस्था है? मगन, एक की लगन में मगन क्यों नहीं है? क्योंकि इतने सारे आकर्षण है संसार के, इसमें फंस चुके हैं। जब तक ये कट नहीं होंगे तब तक वो प्रेम जागृत भी नहीं होगा। कट द ब्रिजेस, ड्राउन द बोट, थ्रो द लैडर, तीन शब्द है। सबसे पहला कट द ब्रिजेस, कट द ब्रिजेस अर्थात आर्मी में एक नियम है, यदि यहां से बीच में खाई है उस ओर जाना है तो एक पुल बनाते हैं, उस ओर जाने के बाद पुल को काट देते हैं ताकि वापस जाने का कोई चांस ना हो। कट द ब्रिजेस, ब्रिज को कट कर दो। ड्राउन द बोट, जिस नाव में बैठकर आए हो अब उसको डुबो दो ताकि वापस उसी किनारे में जाने के लिए इच्छा ना हो। बाबा ने कहा है तुम्हारा लंगर उठ चुका है, तुम्हारी नाव चल पड़ी है, अब हम जा रहे हैं बाबा के साथ। मेरे जिंदगी की कश्ती बाबा लिए चले हो, रफ्तार रफ्तार इसको रफ्तार में लिए हो, गीत है ना एक, ड्राउन द बोट। अब वापस उस किनारे, वापस उस दुनिया में, वापस उस रीति रस्म में, उस समाज और उस समाज की परिपाटी में जाने की कोई इच्छा ना हो। जिसे छोड़ दिया उसे छोड़ दिया, जिसे महानात्मा एक ही बार प्रतिज्ञा करती है, बार बार प्रतिज्ञा नहीं करती है। भीष्म ने एक ही बार प्रतिज्ञा की, बस थ्रो द लैडर, जिस सीढ़ी से ऊपर आए हो ऊपर आने के बाद उसको फेंक दो। थ्रो द लैडर, ड्राउन द बोट, कट द ब्रिजेस। ये नियम है। जब तक ये तीन कार्य नहीं होंगे, परमात्म स्नेह, परमात्म प्रेम, वो ईश्वरीय मस्ती, वो रूहानी खुमारी, वो मौलाई मस्ती, वो नारायणी नशा कैसे हृदय में प्रकट होगा? ऐसा प्रेम। दादी जानकी का एक उदाहरण, एक संस्मरण, दादी कहती है कि एक सुबह सुबह मधुबन में दादी बाबा को ढूंढ रही थी, बाबा कहीं दिख नहीं रहे थे। यहां ढूंढा, वहां ढूंढा, 10 बजे का सुबह का समय था, कहीं पर भी बाबा नहीं मिल रहे थे। उस समय तो बाबा अपने कमरे में रहना चाहिए था, बाबा उस समय पत्रों का जवाब देते थे, कहीं पर भी नहीं मिल रहे थे। दादी ढूंढ रही थी, दादी हिस्ट्री हॉल पहुंची, हिस्ट्री हॉल में सारी खिड़कियां बंद थी, दरवाजा भी बंद था। दादी को लगा शायद अंदर से कुछ आवाजें आ रही है। दादी ने खिड़की खोली और खिड़की से देखा तो बाबा अंदर नाच रहे थे। दादी ने पूछा, बाबा आप ये क्या कर रहे हो? बाबा ने कहा, बच्ची बाप को नशा है कि मैं अभी ये देह को छोड़कर मिचनू कृष्ण बनूंगा। क्या ऐसा नशा हमें है? संसार के विचार, संसार की आसक्तियां, संसार के संबंधों के ही विचार इतने भरे हैं मन में कि ये विचार कब आएंगे? जब आत्मा इससे रिक्त होगी तब कहीं जाकर नया भरेगा, तब वो अनुभव होगा बाप समान। काम क्रोध निमले ठाईचे झाला स्वयमेव पांडुरंग। ये अवस्था कब आएगी? सारे विकार जब निकल जाए, झाला स्वयमेव पांडुरंग। My father and I are one. Jesus Christ कहते हैं My father and I are one. कभी तो उसने कहा है कि तुम कौन हो, उससे पूछा तो उसने कहा है I am son of God, मैं ईश्वर का बेटा हूं। फिर पूछा गया तुम्हारा पिता कहा है, My father that art in heaven। आगे एक बार उसने कहा My father is in me and I am in my father। मेरे पिता मुझ में है और मैं मेरे फादर में हूं। तुम्हारा और तुम्हारे बाप का संबंध क्या है? तीसरा उत्तर है My father and I are one। तीन अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था वो अलग हम अलग, वो पिता मैं पुत्र। दूसरी अवस्था वो मुझ में और मैं उसमें, वो मुझ में और मैं उसमें। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझ में है, वो अनुभव। तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आसपास हो, आते नजर नहीं, मेरे आसपास हो, अंदर भी वो है। अनुभव है कि वो हमारे साथ साथ चल रहा है, मेरे अंदर वो है, मेरे साथ वो है, उसकी छत्र छाया में मैं चल रहा हूं, उसकी याद हम में समाई हुई है। ये अनुभव, दूसरी अवस्था। और तीसरी अवस्था है कंबाइंड, माय फादर एंड आई आर वन। इस एक महावाक्य के वजह से ही जीसस क्राइस्ट को सूली चढ़ा दी गई कि तुम कहते हो कि तुम पिता हो, कि तुम ही ईश्वर हो, धर्म ग्लानी है, तो ब्लास्फेमी है। प्रेम, बी ई परफेक्ट इवन एज यूअर फादर दैट आर्ट इन हेवन इज परफेक्ट। तुम्हें वैसे ही संपूर्ण बनना है जैसे मेरे पिता जो कि स्वर्ग में है संपूर्ण है, जो कि बाबा भी बहुत बार मुरलियों में कहते हैं तुम्हें बाप समान संपूर्ण बनना है। जो समीप है वो समान है, या जो समान है वही समीप है। ये मुरलियों में इस तरह के बहुत सारे महावाक्य आते हैं। तो जो उसके संकल्प हमारे संकल्प, जो उसके बोल वो हमारे बोल, जो उसकी स्थिति वो हमारी स्थिति, जो उसकी दृष्टि वो हमारी दृष्टि, जो उसके संस्कार वो हमारे संस्कार, जो उसका स्वभाव जो वो हमारा संस्कार। मनसा वाचा कर्मणा बाप समान, ऐसी जो स्थिति है और ऐसे जो बच्चे हैं वो बाप को बहुत प्रिय है। तो ईश्वरीय प्रेम, तो ये तीन अग्नि को प्रज्वलित करना है। कौन कौन सी? पवित्रता की, दूसरा वैराग्य की, और तीसरी ईश्वरीय प्रेम की, और इतनी प्रज्वलित करना है कि फिर वो हमसे निकलकर विश्व में फैले, हमसे निकलकर विश्व में फैले, ये लक्ष्य है। जो आरामदायी जीवन अब हम जी रहे हैं और जिस नींद में हम सो रहे हैं उससे जागना है, उठना है। ऐसी जब जागरण की अवस्था होगी या ये तीनों चीजें जब होगी, इन तीनों चीजों के आधार से जब ज्ञान का अध्ययन करोगे वो अध्ययन कुछ और होगा। इन तीन अवस्था में स्थित होकर जब मुरली पढ़ोगे या सुनोगे तो वो पढ़ना वो नहीं होगा जो अब पढ़ रहे हो और सुन रहे हो। वो एक एक शब्द बदल जाएगा। कल रात में भी हम एक बात कह रहे थे, शब्दार्थ, एक एक शब्द का अर्थ समझ में आएगा। वाक्यार्थ, एक एक वाक्य का अर्थ समझ में आएगा। गुणार्थ, गुण अर्थ क्या है वो समझ में आएगा। शब्दार्थ, वाक्यार्थ, गुणार्थ, ये सब कुछ समझ में आएगा। और जब तक ये समझ में नहीं आता है आत्मा आगे नहीं बढ़ सकती। तो तीनों ही चीजों पर काम करना है, ठीक है। तो अब अभी हम सभी योग में बैठेंगे।